तो नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पासुकर। आज हमारे साथ मोबाइल वाणी के मंच पर जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक ऐसी शख्सियत रूबरू होने जा रही जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं चुटकी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। आदरणीय राजकुमार सिन्हा जी, जबलपुर से। नमस्कार सर जी।
नमस्कार।
सर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की आई है, तो जलवायु परिवर्तन आखिर है क्या?
देखिए, ये जो हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा आगे पीछे जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, उसको सब मिलाकर के जो उसमें परिवर्तन हो रहा है उसको जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये परिवर्तन होने के दो कारण है। एक तो प्राकृतिक कारण है, जो अपने आप पूरा जो आपका वातावरण है वो अपना संतुलन बनाता है, घटता है, बढ़ता है। लेकिन दूसरा कारण सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में आप देखें कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, है ना, वो जो आदमी ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी का उपयोग करना, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्तावादी जिंदगी जीते हैं, तो वो ज्यादा यूज करते हैं, तो वो ग्रीन हाउस ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। और जो कम से कम, जैसे ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में जो कम से कम संसाधन पे जीते हैं, वो कम से कम उत्सर्जन करते हैं, है ना
जी।
तो इसे, और जो कार्बन के उत्सर्जन के कारण जो हमारा पूरा वातावरण वो हमारा गर्म होता जा रहा है, जिससे कि वातावरण में वायु में जलवायु में परिवर्तन होने से कभी कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बहुत ठंडी होती है, कभी आप देखते हैं अमेरिका में अभी पूरा बर्फीला तूफान चल रहा है, समुद्र के किनारे रहने वाले कोस्टल बेल्ट के लोगों को काफी जो है सो इस प्रकार से वहां पे कभी समुद्र में तूफान आता है जिससे मछुआरों की जिंदगी और जो कोस्टल बेल्ट में रहने वाले हैं उनकी जिंदगी बहुत सारे चीज बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये जो सारे के सारे कारण है वो कारण मानवीय कारण है, वो सामाजिक कारण है। हमें इस पे विचार करना पड़ेगा कि हम इस जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कैसे कम करें। जी
सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने दो कारण महत्वपूर्ण बताए जिसमें एक सामाजिक कारण भी बताए, क्योंकि आप नर्मदा मिशन को लेकर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे समाज सेविका मेघा पाटकर जी के साथ भी आप जुड़े हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का खेती किसानी पर कितना नुकसान हो रहा है?
देखिए, खेती किसानी पे ज्यादा असर हो रहा है। जिस प्रकार की अभी गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो आपके जो गेहूं का उत्पादन है वो कम हो रहा है। पूरा जो हमने जो एस्टिमेट किया था कि भाई इतना हमारा गेहूं का उत्पादन होगा, उससे काफी असर हो गर्मी पड़ने पहले गर्मी, अब फरवरी माह में जितनी गर्मी पड़ रही है वो अन्य साल की अपेक्षा 11 डिग्री ज्यादा हो रहा। तो वो, और इस समय क्या है कि जो हमारे गेहूं है वो रस में होते हैं तो वो सूखने लगेंगे, तो इसका उत्पादन घटेगा। दूसरा है कि खेती बाड़ी में जो आपका मौसम का चक्र है ना, वो भी बदल रहा है। कम से कम ठंड पड़ रही है और अधिक से अधिक गर्मी पड़ रही है, तो दोनों है। एक तो जो आपके जो आर्थिक उत्पादन का क्षेत्र खेती है उस पे असर हो रहा है, और दूसरा जो आपके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। लगातार लोग ज्यादा से ज्यादा भी गर्मी पड़ने वाली है, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, तो उससे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो जिन्हें बाहर काम करना है, मजदूरी करना है, या मान लीजिए जो ये जो क्या कहते हैं मकान बनाने के काम में, मतलब जो सड़कों पे काम कर रहे हैं गरीब तबके के लोग, उन पे ज्यादा असर होगा। वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी गर्मी के कारण। ये सब चीज बहुत महत्व का आगे आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है।
जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में देखने में आ रहा है कि जहां एक ओर जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व चिंतित है, देश भी चिंतित है, और इसको लेकर कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई है, कई स्वयंसेवी संगठन आगे आकर काम कर रहे, इसके बावजूद भी हम यदि नदियों की बात करें तो नदियों में अवैध उत्खनन जिसके कारण नदियां बहुत प्रभावित हो रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये पूरा का पूरा एक नदियों का व्यवसायीकरण हो रहा है। नदी का पानी लेकर के बेचना एक तरह से व्यवसाय हो गया, जबकि नदी सभी के पीने के पानी की उपलब्धता कर सकता है, थोड़ा बहुत रेत जो भी जो हो सकता है निकालना चाहिए, लेकिन अब अवैध उत्खनन पैसे के नाम पे जितने भी दबंग लोग हैं आसपास के वो सारा रेत उत्खनन में लगे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए जो रेत है वो एक तरह से फिल्टर है नदी का, नदी का जान है, नदी को फिल्टर करता है, कचरा को ये करता है और दूसरा क्या करता है, पानी को रिटेन करके अंदर जो जो ग्राउंड वाटर में ले जाता है, वो सारी की सारी पारिस्थितिकीय तंत्र को खत्म कर रहे हैं जिससे नदी लगभग मृत प्राय हो रहा है।
भाई साहब, जैसा कि आपने अभी नदियों की ज्ञान रेत को बताई है, नदियों में जो खेतियां होती है खरबूजा तरबूजा की, उसमें इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है?
नहीं देखिए, खरबूज तरबूज पे तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तो लगातार करते किनारे में करते आ रहे हैं, वो ज्यादा उत्खनन तो करते नहीं है, है ना, जो जो पूरा का पूरा कहीं उठा के तो ले नहीं जाते हैं उसी रेट में।
भाई साहब
जी,
मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अवैध उत्खनन का असर जो खरबूजा की खेती होती है उसके ऊपर कितना पड़ रहा है?
नहीं वो तो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, कहीं वहाँ पे लोग बचे ही नहीं, वहाँ ना रेत पता है ना ये पता है, जो जो नीचे जो जो नर्मदा घाटी में जो खेत तरबूज खरबूज पे जो काम करते थे छोटे गरीब लोग अपना जीविका चलाते थे, उनकी खत्म हो गई है, उनकी बात तो सरकार सुनती नहीं है, वहाँ के दबंग लोग उनको धमका करके उस जमीन से बेदखल कर दिया है।
भाई साहब, जैसा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मैका कहा जाता है, मध्य प्रदेश में जहाँ पवित्र जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी बहती है, तवा नदी, ताप्ती नदी, कन्हा नदी, वैनगंगा नदी, आज इन सभी नदियों में जेसीबी और पोखरण के माध्यम से उत्खनन हो रहा है और जिसका सीधा सा असर जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, इसके ऊपर शासन ने किस तरह से अंकुश लगाना चाहिए, इसमें आपके क्या सुझाव है?
नहीं, सरकार को इन सभी चीजों को एक रेगुलेशन में लाना चाहिए, एक कानूनी में दायरे में लाना चाहिए कि कितना हमें उत्खनन करना है, कितने क्यूबिक मीटर हम रेत निकाल सकते हैं, इसकी एक निगरानी तंत्र व्यवस्थित करना चाहिए। जो खनिज विभाग है वो तो ठेकेदार से मिला रहता है और वो सारा का सारा जो है सो रेत उत्खनन करके माफिया, उनको माफिया के साथ उनकी साठगांठ है, ऐसे अखबार में लगातार आ रहे हैं, दैनिक भास्कर से लेकर सभी अखबारों में छप रहे हैं। तो एक तरह से पूरा पैसा के जो पूंजी है वो पूंजी सभी चीज को खत्म कर रहा है, वो जंगल हो, जल हो, जमीन हो, सब चीज को खत्म करते जा रहा है और आने वाले समय में हमारे पूरे पर्यावरण को समाप्त हो जाएगा। और तब अगर अभी हम अगर नहीं कहते और निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी।
जैसा कि भाई साहब अभी आपने अपने शब्दों में कहा है जल जंगल जमीन, तो हम आपसे जानना चाहें कि जलवायु परिवर्तन का असर जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों पर कितना पड़ रहा है?
देखिए, जो जो वहाँ पे जो उत्पादन था, जैसे आप तेंदू पत्ता को ही देखते हैं या जो वहाँ पे जो लघु वनोपज है उसके उत्पादन में भी असर पड़ रहा है, लोगों को जिस मात्रा में लघु वनोपज मिलता था उसके उत्पादन में कमी आई है। दूसरा है कि जंगलों में रहने वाले जो खेती करते, हालांकि वो ज्यादा सुरक्षित है जंगल में रहने वाले अनिस्पत्ति शहरों से, लेकिन जो उनका आजीविका का संसाधन है वो सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये चिंता का विषय।
भाई साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी देखने में आ रहा है कि जंगलों की अवैध कटाई बहुत हो रही है और जैसा कि मैंने आपका एक लेख भी पढ़ा था जिसमें आपने लिखा है जंगल मंदिर है और जंगल के अंदर पेड़ उनका देवता, तो इस कथन से भी मोबाइल वाणी के श्रोताओं को थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए कि जलवायु परिवर्तन अवैध कटाई के कारण कितना प्रभावित हो रहा है और इससे आदिवासी जन समुदाय कितना प्रभावित हो रहा है।
देखिए, अब मैं बताऊं तो जैसे कि हिमालय से ग्लेशियर से गंगा निकलती है लेकिन नर्मदा तो जंगलों से निकलती है, जंगल खत्म नर्मदा खत्म। आप अभी देखें जो नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं उन नदियों में आप देखें तो अब जो पहले बारहमासी नदियां थी वो हमेशा पानी बहते रहता था, आज अप्रैल के बाद देखेंगे तो वो सूख जाती है, आधे रास्ते में उनका दम टूट जाता है, क्योंकि जंगल लगातार जल ग्रहण क्षेत्र में कट रहा है और जंगल क्या करता था, पूरे पानी को रोकता था, बारिश के पानी को वो अपने अंदर ले जाता था और फिर धीरे धीरे वो अपने पानी को छोड़ता था, इससे हमारी जो सहायक नदियां थी वो हमेशा सदा नीरा रहती थी। लेकिन आज देखेंगे तो पूरे सभी नदियों के आसपास से जंगल कट रहे हैं, जंगल के कटने से जंगल कटा और पानी कम हुआ, ये तो सीधा सा गणित है।
भाई साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप जो चुटका अभियान में सहयोगी हो वो यह अभियान किस लिए काम कर किस दिशा में काम कर रहा है आपका और इसके क्या उद्देश्य?
चुटका को लेकर के ना।
हाँ जी
देखिए, चुटका जो है ये एक परमाणु बिजली है और इस परमाणु का आपने खतरा देखा है किस प्रकार से भोपाल में थोड़ा सा मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, कितना बड़ा हादसा हो गया है। और विश्व में आपने फुकुशिमा देखा होगा, थ्री माइल आइलैंड देखा होगा, ये बहुत ही खतरनाक जिसका कि अभी तक कोई निदान नहीं है। लगभग 2.5 लाख साल तक ये जो है तो विकिरण पैदा करता है, उससे आसपास के जो पूरे रहने वाले लोग हैं, आगे आने एक दशक के बाद देखिएगा तो वहाँ विकलांगता होती है, बांझपन होता है, अन्य तरह की बीमारियां वहाँ पे पैदा हो जाती है। ये सारे सारे अनुभव वहाँ पे रेखांकित किए गए हैं जहाँ जहाँ ये परियोजना बनी हुई है ना, तो इसको लेकर विरोध है। दूसरा, ये नर्मदा के किनारे करने से जो पूरा उसका विकिरण युक्त पानी होगा वो पूरे नर्मदा के जल को कंटेमिनेट करेगा, दूषित प्रदूषित करेगा, और जो वहाँ जो जैव विविधता है, वहाँ जो उस मछली का जलाशय में वो सब सारे के सारे मछली का उत्पादन घटेगा, उसमें जो है सो प्रदूषित होगा, और अंत में बाजार में ये पता चलेगा कि बर्गी का मछली है बिकना बंद।
भाई साहब, आपसे हम अंतिम प्रश्न जानना चाहते कि आप एक निरंतर नर्मदा बचाओ आंदोलन और चुटका अभियान में काम कर रहे, तो आप मोबाइल वाणी के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें सुधार आ सके?
देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो आदमी जो सबसे ज्यादा उपभोग कर रहा है उसके ऊपर असर कम पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो सुरक्षित जगह पे रहते हैं, है ना। लेकिन जो गरीब जो कम से कम इसका कार्बन का उत्सर्जन करता है, लेकिन असली सबसे अधिक मार उन्हीं पे पड़ता है, तो हमें लगता है कि हम अपने संसाधन को बचाएं और ये जो पूरा मुहिम है उपभोक्तावादी संस्कृति का, उसके खिलाफ हमें आगे आना पड़ेगा कि हमें विकास, जो हम विकास परियोजना के नाम पे जो हम जंगल खत्म कर रहे हैं, नदियां खत्म कर रहे हैं, उससे सवाल चिन्ह मध्यम वर्ग से लेकर के किसानों को खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे के सारे जो है तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है खत्म हो जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने मोबाइल वाणी के माध्यम से रूबरू होकर एक महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन पर अपनी राय दी, इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।
शुक्रिया।